यशोदा नंदन व्रज जन रंजन जमुना तीराबन चारी जमुना तीराबन चारी जयो बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जनर जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी श्री राधे जयो राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी श्री राधे जय श्री गौरंग श्री गौरंग श्री गौरंग जय श्री गौरंग जय श्री गौरंग श्री गौरंग श्री गौरंग जय श्री गौरंग जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टावसर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टावसर श्री शिव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा द्वारका धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नवदीप धाम की गोलोकेर प्रेमधुन श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भक्ति देवी की तुलसी देवी की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल दिवोरी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल दिवोरी ऑल ग्लोरीज टू असेंबल दिवोरी ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा आप सभी का ये जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर जो 5 दिन का कथा सत्र है उसमें स्वागत है। तो मैं बहुत यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों से विनती करता हूँ उनकी कृपा चाहता हूँ ताकि मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री कृष्ण के विषय में कुछ प्रेरणादायक जो है शब्द कह सकूँ। और मैं साथ ही हमारे वरिष्ठ वैष्णवों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये कथा करने का अवसर दिया जो मैं मेरी पात्रता नहीं है किंतु मेरे शुद्धिकरण के लिए जो है और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के लिए हम कुछ थोड़ी देर इधर चर्चा करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रहिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये 5 दिवस हम लोग कुछ कृष्ण के बारे में कथा सुनेंगे। तो मुझे कृष्ण भगवान की जन्म लीला के विषय में तो नहीं, पर मेरी उतनी पात्रता नहीं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की चर्चा क्यों करनी चाहिए, इस उत्सव को मनाने का क्या महत्व है, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण उद्धव गीत में जो है उद्धव जी से बोलते हैं, मदलिंग मद भक्त जना दर्शन स्पर्शना अर्चनम परिचर्य स्तुति प्रहव गुण कथानुकीर्तनम मत कथा श्रवणे श्रद्धा मद अनुध्यान उद्धव सर्वलाभोपहरणम दासेनात्मनिवेदनम मज्जन्म कर्म कथनम मन पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भीर्मद गृहोत्सव। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जो भौतिक जगत में कोई व्यक्ति है जो गर्व से और अभिमान से मुक्ति पाना चाहता है तो वो किस तरह पा सकता है, भक्ति के द्वारा। और भक्ति में भी वो बता रहे हैं किन किन अंगों के द्वारा। तो भगवान बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा जो विग्रह है, जैसे यहाँ पर श्री राधा वृंदावन विहारी श्री गौरांग महाप्रभु, और मेरे भक्तों के दर्शन करने मात्र से, बोल रहे हैं मलिंग मद भक्त जन दर्शन मेरे विग्रह या मेरे भक्तों को देख कर। तो आप लोग भी देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं आसपास, हाँ मुड़ कर देख लीजिए, हाँ और विग्रह को तो आपने देख लिया। तो सिर्फ विग्रह ही नहीं, भक्तों को भी देख कर, उनको छू कर, वैसे अभी कोविड की वजह से जरा छूना मना है तो हाँ तो दूर से स्पर्श करते, बोल रहे हैं स्पर्शना स्पर्शानु स्पर्शनार्चनम स्पर्श अर्चनम मतलब उनकी पूजा करके। जैसे यहाँ पे कुछ लोग आपने देखा होगा, अभी थोड़े समय पहले आरती हो रही थी, तो हमारे शास्त्र में विधान है कि जो व्यक्ति जो सिर्फ आरती करता है वो ही नहीं, जो देखता है उसको भी उतना ही लाभ मिलता है। तो अर्चना का भी जो है लाभ है, और भक्तों की अर्चना हम उनको दंडवत मार के, अभी वो भी अलाउड नहीं है तो प्रणाम करके, मन में प्रणाम करके कर सकते हैं, पूजा करके, सेवा करके, कुछ किसी भक्त के कुछ मदद करके, भगवान की कुछ सेवा करके जो है उनको प्रणाम करके, उनके गुण रूप आदि जो है उनका कीर्तन करके, परिचर्या मतलब उनकी सेवा स्तुति प्रहवा उनका गुणगान करके, गुण कथानुकीर्तनम सिर्फ भगवान का नहीं भक्तों के भी गुण कथा उनका कीर्तन करके। और फिर भगवान बोले मत कथा श्रवणे श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा के साथ उद्धव को बोल रहे हैं सर्व लाभोपहरणम। तो कैसे, और दास्य नात्म निवेदनम कैसे, मुझ पर ध्यान करके मेरी कथा श्रवण श्रद्धा के साथ करके, और मुझे सब कुछ जो भी आपके पास है वो अर्पण करके, मेरा दास बनके, और मद जन्म कर्म कथनम मम परवानुमोदनम मेरे जन्म और कर्म यानी कि मेरी प्राकट्य की, मेरी गतिविधियों की, मेरी लीलाओं की चर्चा करके, मम पर्व मतलब ये जो हम जन्माष्टमी का महोत्सव है, जन्माष्टमी इत्यादि नंदोत्सव इत्यादि में सम्मिलित होकर, और यहाँ पे लिखा है गीत तांडव, तो मैं सोचा तांडव क्यों लिखा, नृत्य नहीं लिखा, तांडव जब शब्द मैंने पढ़ा तो मुझे श्री गौरचंद प्रभु का याद आया, उनका डांस देख के बहुत ही एकदम एकदम बहुत ही स्फूर्ति के साथ एकदम हरि नाम का आनंद लेते हुए। तो गीत तांडव गाकर, गाकर कीर्तन गाकर जो है, और डांस करके जो है, कीर्तन में नृत्य करके परम पूज्य क्या नाम है महाराज का, उड़ीसा में जो है थे जो शरीर छोड़ दे, हाँ गौर गोविंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि तीन प्रकार के जो है कंजूस होते भक्ति में, जो है उनको कपटी जो है लिखते हैं, वो लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपटी पावन नहीं है। कौन से कपटी होते हैं? पहला जो है प्रेम कपटी, जो अपना प्रेम भक्तों को नहीं देते, मतलब अभी भी मन में किसी और के लिए, बाहर वालों के लिए प्रेम जो है उनके लिए ही ज़्यादा है, भक्तों के लिए प्रेम नहीं है। दूसरा अपना धन नहीं देते, जो है धन देने धन देने की इच्छा नहीं होती। एक संत के पास दो लोग आया करते थे, एक पहलवान और एक सेठ। तो सेठ जी तो बहुत धनी थे लेकिन शरीर से बड़े दुर्बल थे, कमज़ोर। तो आते थे महाराज जी से, बोलते थे महाराज जी मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अगर मैं थोड़ा शक्तिशाली होता तो मैं आपके हाथ पैर दबाता था थोड़ा। महाराज जी बोलते कोई नहीं कोई नहीं। हाँ फिर एक पहलवान आता था, वैसे तो बहुत गरीब था लेकिन शक्तिशाली था, लेकिन वो संत जी से बोलता था महाराज जी मैं पास जो है कुछ भी पैसा नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता था तो मैं आपको ज़रूर कुछ सेवा के लिए देता था। तो ऐसे देखिए, इस प्रकार से जो है उसको देने की इच्छा नहीं होती, जो नहीं है उसके बारे में अगर ये मेरे पास होता, तो ये रजोगुण का स्वभाव है। रजोगुण व्यक्ति जो है वो सोचता है अगर ये मेरे पास होता, तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति ये होता तो मैं ये करता। तो धन कपटी, जो अपना धन नहीं देना चाहते, धन मतलब जो भी आपके सामर्थ्य है वो नहीं देना चाहते। और तीसरा वो बोलते हैं नृत्य कपटी, जो लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन जो आंदोलन में नृत्य नहीं करते उनको बोलते हैं संकीर्तन कपटी। तो गौरचंद प्रभु बहुत खुश होंगे क्योंकि वो चाहते हैं सब लोग जो है डांस करें, लेकिन कुछ लोग जब बस देख के खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से तो ये जो जन्माष्टमी जो नंदोत्सव बड़ा है, तो ये जितनी भी सारी गतिविधियां भगवान ने बताई हैं यहाँ पे उद्धव जी को, ये एक ही इस त्यौहार में, इस महोत्सव में हमें करने को मिल जाएंगी। हाँ अभी कोविड की वजह से हमें, ये कोरोना की वजह से दूर रहना पड़ता है, वरना कुछ भी ऐसे महोत्सव में आप लोग को पता होगा कि हॉल में बैठने की जगह नहीं होती, हम एक दूसरे को स्पर्श तो करना ही पड़ता है। देखने भी जब हमारे कभी जब होता है फेस्टिवल में जब भी, तो हमें कुछ छूने की इच्छा नहीं, पर फिर भी इतनी भीड़ होती है कि छूना पड़ता है। लोगों के भक्तों के दर्शन होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो ये सब गतिविधियाँ भगवान की और भगवान के भक्तों की। तो भगवान की कथा आती है तो उनके भक्तों की कथा भी आ ही जाती है, तो वो उसमें सम्मिलित होकर मंदिर में गाकर बजाकर दूसरे वैष्णवों के साथ, अकेले नहीं, भगवान ने कंडीशन अप्लाइड वहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि अकेले नहीं भक्तों के साथ ये सब गतिविधियां करने हैं। जो व्यक्ति करता है उसको गर्व और अभिमान से जो है उनसे जो है छुटकारा मिल जाता है। तो ये जन्माष्टमी के अवसर पर तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब तो गर्व अभिमान से जो है मुक्त हैं, लेकिन मुझे उससे जो छुटकारा मिल जाए कथा करने के बाद। तो ये गतिविधियां जो है साथ में आकर जो हमें करने का मिल रहा है, और भगवान ने यहाँ पे जो ये कंडीशन दी है कि हमको साथ में आना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहेंगे कि साथ में आना क्यों ज़रूरी है। तो रामायण की कथा में, क्योंकि अभी है तो वैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही, पर हवा में थोड़ी राम कथा का भी जो है सुरूर जो है चल रहा है, राम जी की भी बड़ी चर्चा हो रही है। तो भगवान राम जब जो है
सीता स्वयंवर के लिए गए थे, तो वहां पर किसी को मालूम है कितने और राजा आए थे? हाँ, किसी को भी अभी है नहीं कोई यहाँ पे, किससे पूछेंगे, लेकिन जो है कितने राजा आए थे? 10,000 राजा आए थे। तो 10,000 राजा जो है वो आए थे माता सीता से विवाह करने के लिए, स्वयंवर में भाग लेने के लिए। जो है वो जो है शिव चाप को उठाकर उसकी जो है प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, इसके लिए वो जो विवाह में जो माला पहनाई जाती है उसको जयमाल बोलते हैं। हाँ, जो विजयी होगा उसको वो माला मिलेगी। तो सब लोग साथ में थे, लेकिन सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, साथ में नहीं थे। जैसे भगवान ने बोले साथ में आकर एक उद्देश्य की तरफ जाने के लिए, हम लोग क्या एक, हमारा एक केंद्र, हमारा जीवन में एक केंद्र बिंदु है, एक जो है उद्देश्य है क्या भगवान को पाने का? नहीं, यहाँ पर सब लोग, तो जैसे आजकल की जो आजकल के ज़माने की जो है अर्वाचीन समाज में जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें इसी प्रकार एक कंपनी में इस तरह हजारों लाखों लोग काम करते हैं, बात करते हैं कि साथ में आना, यूनिटी, कोऑपरेशन, बट सब लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। सब लोग सोचते हैं कि आई एम हीरो एंड एवरीवन एल्स इज जीरो जो है, लेकिन हम भक्ति में हमारा क्या है कि कृष्णा इज हीरो एंड हम सब जीरो, तो हम लोग उनके साथ में बनकर जो है एक विशाल जो है करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर साथ में आने का जो मकसद है, तो इसके लिए वो 10,000, क्योंकि वो राजा एक दूसरे से प्रतियोगी कर रहे थे, इसके लिए वो धनुष नहीं तोड़ पाए। तो किसी ने एक्चुअली कहा है कि अकेले में तो हम परछाइयों से डर जाते हैं, अकेले में तो हम परछाइयों से डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो दुनिया जीत लेंगे। तो परछाइयों से भी जो लोग डरते हैं, इसके लिए भगवान हर जगह बोलते हैं साथ में आओ, साथ में आओ, भक्तों के साथ में आओ। तो आपने एक्चुअली इस नाम का एक क्या बोलते हैं मीनिया, क्या बोलते हैं उसको, बीमारी भी जो होती है एक साइकेट्री में, जो लोग अपनी परछाई से डरते हैं, बहुत सारे चीज़ों से डरते हैं, तो उसमें लोग परछाई से डरते हैं। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम में एक जो प्रसंग आता है जहाँ पर प्रचेता प्राचीनी भरत के पुत्र जो है वो एक साथ जो है सब भक्ति करते हैं, भगवान अवतरित होते हैं और उनको प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृप नंदन सौहृदेना पृथक धर्म तुष्टो हम सौहृदेना वा। वो बोलते हैं वो कि प्रचेता हूँ मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, क्यों? आप लोग साथ में मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। क्या वो बोलते हैं वहाँ पर कि वो क्या है? भक्ति। आप लोग साथ में मिलकर भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसके लिए हम लोगों को, और प्रभुपाद जी जो है उधर तात्पर्य में बोलते हैं कि हम लोगों को अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, पर भगवान के हेतु, भगवान की सेवा के लिए जो है साथ में आना है। और बोलते हैं कि कलयुग में यही एक सबसे बड़ा जो कलह का विषय है कि हमारी जो ये कृष्ण आंदोलन संस्था में लोग पर्सनल हेतु को जो है दरकिनार कर कर अगर कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए साथ में नहीं आएंगे, वही जो है कलह का विषय होगा। लोग जो है उनके अपने हेतु रहते हैं, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। तो सब लोग जो है कोई दुख भी नहीं पाना चाहता, कोई कम भी नहीं पाना चाहता, सबके अपने अपने हेतु हैं, लेकिन हमें वो हेतु को दर किनार कर कर जो है भगवान की सेवा के लिए साथ में आगे जाना है। शरीर की ज़रूरतें और आत्मा की ज़रूरतें जो हैं उनको जो है देखना है, ये जो है आत्मा के लिए भक्ति जो है वो जरूरी है, तो उसके लिए साथ में मिलके चलना है, लेकिन अगर शरीर से जुड़ी हुई जरूरतों को देखेंगे तो झगड़ा होगा ही, क्योंकि जिस्म और रूह में झगड़ा पड़ा है, जिस्म और रूह में झगड़ा पड़ा है कि हिस्सा कृष्ण के इश्क में किसका बड़ा है, कि भगवान की भक्ति में जो है अगर हम ये सोचेंगे किससे मेरी जो है भक्ति में, मेरी प्रगति में फायदा होगा, वही कार्य में हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो है और किसी हेतु, पैसा कमाने के हेतु और किसी कार्य के हेतु अगर जुड़ेंगे तो हमेशा हम कलह के बीच में फंस जाएंगे। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि हमको ये सब गतिविधियां जो है साथ में आकर करनी है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो महोत्सव है, ये किसने इसको मनाने के लिए बताया? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। तो सनातन गोस्वामी जी द्वारा जो एक लिखित जो है ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास, उसमें वो भविष्य पुराण का एक प्रसंग बताते हैं जिसमें महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, अरे ये जन्माष्टमी का जो व्रत है, स्वयं जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अपनी लीलाएं करें, तो उनको पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण ये जन्माष्टमी का व्रत शुरू कैसे हुआ, इसके लाभ क्या है, इसकी विधि क्या है, कैसे बताइए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया। तो भगवान बोलते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ तुमको ये कैसे शुरू हुआ। जब मैंने मथुरा में कंस का वध किया, मेरे मामा कंस का वध किया, तो माँ देव की इतनी प्रसन्न हुई, मुझे गोद में लेकर रोने लगी और उनके आंसुओं से जो है पूरा मेरा शरीर भी भीग गया। और फिर पिता भी मेरे बहुत स्नेह में रोने लगे, वो भी मुझे बहुत प्रेम करने लगे। और फिर वो खड़े होकर सभी उपस्थित लोगों को संबोधित करने लगे कि अरे आज मेरा जीवन सार्थक हो गया कि मेरे दोनों पुत्रों ने इतना शौर्य वाला कार्य किया है। और फिर मेरे पिता ने मुझसे निवेदन किया कि पुत्र कृष्ण कुछ ऐसा करो कि जहां उपस्थित सभी लोग तुम्हारी कृपा का पात्र बन जाए। तो हम लोग उसके लिए क्या करना चाहते हैं कि तुम्हारे से जुड़ा हुआ एक महोत्सव मनाना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने बताया तो आप लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये जन्माष्टमी महोत्सव के बारे में बताया, बताया कि कैसे भाद्रपद जो है उसके शुक्ल पक्ष नहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है जन्माष्टमी की तिथि मनाई जाएगी, भगवान का जन्मोत्सव। अगर सप्तमी उसको छूती है तो उसे अशुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर नवमी छूती है तो मना सकते। मतलब इतना डिटेल में भगवान ने बताया, कैसे बताया पहले। और फिर भगवान ने ये भी बोला पहले ये जो उत्सव है महोत्सव है ये मथुरा में मनाया जाएगा और उसके बाद संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध होगा। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अभी यहाँ पे और भी कई जगह पे कथा और महोत्सव चल रहा होगा। तो ये जो है तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस विषय के बारे में जो है बताया कि ये जो महोत्सव है सब जगह मनाया जाएगा और सामान्य दिवस नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, जो है वो लिखते हैं भक्ति संदर्भ में, इस शब्द के लिए प्रयोग करते श्री कृष्ण जयंती। और वो बोलते हैं कि जो शब्द अभी बहुत सारे जयंती होते हैं ना, आप देखेंगे हमारे कैलेंडर में जो नॉर्मल कैलेंडर रहता है, ये जयंती शब्द जो है उसका प्रयोग और किसी व्यक्ति मतलब देवी देवता के से भी जुड़ा होने निषेध है। जयंती अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो ऐसा जो है लेख, तो ये हमारे हम लोगों के जन्मदिन जैसा नहीं है, जैसे हम लोग हमेशा अपना जन्मदिन मनाते हैं। वो आजकल अब जब हम मैं बचपन में हमारे मेरे माता पिता जो मेरे जन्मदिवस पर हमें ले जाते थे एक राशन की दुकान में, तराजू में बैठा कर हमारे वजन का अन्न जो है गेहूं दान करते थे, क्योंकि गेहूं को कनक बोलते हैं, कनक अर्थात को जो है सोना, तो कोई सोना नहीं दान कर सकता तो जो है कनक गेहूं दान कर सकता है। लेकिन अभी बर्थडे पे केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। तो मैंने किससे पूछा, कुछ जो हम यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं उनको पता है केक क्यों काटते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता। और हम लोग भी काटते हैं, उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, लेकिन हम लोग सब करे जा रहे हैं, केक काटते हैं। जबकि जो है जन्मदिवस क्या है, एक एक भौतिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु के एक साल और करीब गए हैं, एक बरस और बीत गया, कब तक खाक उड़ानी है। खाक उड़ाने जैसा ये महोत्सव एक आम व्यक्ति जो अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी अपना जन्मदिन मनाते थे, मुझे भी ये पता नहीं था, लेकिन आनंद वृंदावन चंपू जो है उसके अंदर श्री कवि कर्णपूर्ण जो है लिखते हैं कि एक दिन भगवान की जो है जन्मतिथि खुद अतिथि परसोनिफाइड, हमने सुना होगा कि जो है गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में सब कुछ एक व्यक्तित्व है, तो भगवान की तिथि भी एक अतिथि के रूप में आ गई। तो फिर भगवान का जो है कृष्ण जन्म, उनका बर्थडे, उनका जन्मदिन मनाया गया। तो भगवान श्री कृष्ण एक सिंहासन पर विराजमान हुए और ब्रज में उपस्थित प्रत्येक गोप और गोपियों ने उनकी पूजा की, सबने उनकी अर्चना की, पूजा की, नगाड़े बजाए गए, ढोल बजाए गए। वहाँ पे मृदंग का भी वर्णन है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला नगाड़ा, फिर ढोल, फिर मृदंग। कवि कर्णपूर्ण लिखते हैं, नगाड़े, ढोल, मृदंग सब बजाए गए, सब ब्रजवासियों के, और उसमें साथ में सब ब्रजवासियों के नुपुर, मतलब उनकी जो पायल थी उसकी ध्वनि भी मिक्स हो गई, इतना सुंदर हो गया। हम तो जो है, और श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, मंत्रोच्चारण द्वारा जो पवित्र जल था उससे भगवान का स्नान किया जा रहा था, उसमें भी वो स्नान जो पात्र थे उसमें स्फटिक मणियाँ इत्यादि थे, मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं, पर वो मैंने देखा कभी कभी एक कलश में हम वो 12 रत्न जो है वो रखते हैं मणि। हाँ, तो भगवान को, और सहस्त्र धाराओं द्वारा, मतलब हजारों कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक किया जा रहा था। फिर ये भी वर्णन था, उनको अंगोछे द्वारा पहुंचा गया, एक गीला और फिर सूखा, पहले गीले से पहुंचा गया, फिर सूखे से पहुंचा गया, फिर उनको पीताम्बर वस्त्र अर्पण किया गया, फिर उनको मणिबंध, मतलब हाथ में एक मणिबंध जो है वो बांधा गया, फिर गोरोचन का तिलक लगाया गया भगवान को, फिर माँ यशोदा ने उनके ऊपर पुष्प और धान्य का अर्पण किया, फिर पिता और पुत्रों वाली गोपियों ने फिर से भगवान की आरती की, और फिर उनको भगवान को उपहार दिए। किस प्रकार के उपहार दिए? जो उनके योग्य उपहार थे। ऐसे नहीं आजकल के लोग जो कुछ भी जो है डेकोरेटिव आइटम सालों भर पड़ा रहता है या टूट फूट जाता है, काम नहीं आता है। एक महिला, उसका जन्मदिन था, तो उसको उसके पति ने पूछा कि चलो फॉर्म पूछ लेता हूँ कि तुमको बर्थडे पर, जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए। तो महिला ने सोचा इस बार थोड़ा अलग तरीके से गिफ्ट मांगती हूँ, तो उसकी इच्छा थी कार मांगने की। तो उसने पति से बोला कि मुझे एक ऐसी चीज़ चाहिए जिस पर मैं बैठूँ तो 1 सेकंड में वो 0 से 80 तक पहुँच जाए। तो पति ने बोला ओ जरूर। फिर पति ने अगले दिन उनको वजन कांटा ला के दे दिया। हाँ, हाँ, कि देखो इस पे बैठते ही 1 सेकंड पर 0 से। हाँ, तो भौतिक जगत में गिफ्ट इस प्रकार, हाँ, बुद्ध लोग बुद्धि लगाते कैसे जो है बाहर जो है, अगर आप, हम बचपन में जाते थे वो आर्चीज गिफ्ट शॉप में, और गिफ्ट ऐसा होता था बस दिखने में ही अच्छा है। हाँ, हाँ, वो ग्रीटिंग कार्ड जिसमें पहले से ही एक पहले से छपा हुआ मैसेज होता था, लोग अपने आप से एक मैसेज भी लिखते, तो इस प्रकार का उपहार। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण को उनके योग्य, उनके अनुकूल उपहार दिए गए। हाँ, और उसके बाद वहाँ पे कृष्ण का कवि कर्णपूर्ण जो है 3 मिठाइयों का वर्णन करते हैं, मोदक इत्यादि, उसको उन्होंने लिखा है कि लड्डू, सिर्फ वही नहीं जो ऐसा नोकीला रहता है, मतलब गोल वाला भी, सबको मोदक बोलते हैं। फिर खीर, उसको संस्कृत में लिखा गया पायसम। हाँ, तो सिर्फ साउथ इंडियन वाली नहीं, नॉर्थ इंडिया वाली भी। हाँ, तो पायसम अर्थात खीर। हाँ, और अपूप, अपूप अर्थात पुए, मालपुआ, पुए इत्यादि, इतने ऐसे जो मिष्ठान जो है वो सबका अर्पण किया गया। फिर उनको तांबूल दिया गया, फिर से ब्रजवासियों ने उनको सिंहासन पर बिठाया और उनकी आरती की, और फिर सबने प्रसाद का जो है, फिर सबने भोजन ग्रहण किया, प्रसाद लिया। उसके बाद कवि कर्णपूर्ण बोलते हैं, उसके बाद, क्योंकि अभी ये पहले जो है, उसके बाद जटिला कुटिला उन्होंने लिखा है, जटिला जो भी राधा रानी की सास इत्यादियों का रोल लेती हैं वो, और उनके पीछे, क्योंकि वो बड़ी है ना उम्र में, और उनके पीछे पीछे राधा रानी और अन्य गोपियों ने भगवान कृष्ण को अनेक प्रकार की भेंट दी। और उसके बाद माँ यशोदा ने स्वयं सब गोपियों को सोने की थाली में भोजन परोसा और उनको बोला कि सब शर्मा के खा रही थी, ये कवि कर्णपूर्ण ने लिखा है कि यहाँ लज्जा की रक्षा मत करो, जो है स्वच्छंद रूप से खाओ। स्त्रियाँ थोड़ा शर्माती हैं, लेकिन यशोदा मैया ने उनको बोला कि आप एकदम इस्कॉन में तो खैर सभी जो है अपना बे जो है अपने इच्छा अनुसार जितना एकदम खुशी से जो है प्रसाद जो है उसको लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने सबको जो है घर से जो है अपने विदा किया और अंत में उनको बहुत अत्यधिक दुख हुआ और श्रीमती राधा रानी को भी। तो शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस पर बोलते हैं, धन्योसी भाद्रपद मास समस्त काला भद्रम पर्वे तव यदद्य मयानुभूतम त्वायो न योज्यति हा प्रतिमास सेवा धिक्तम विधारमति प्रजगाद राधा। वो बताते हैं कि राधा रानी को भी बहुत दुख हुआ। राधा रानी बोलती हैं कि श्री कृष्ण के जन्मतिथि के महोत्सव में लोगों को जो आनंद का अनुभव करा के श्रीमती राधा रानी के मन में इस प्रकार के जो भाव आए कि हे भाद्रपद मास, वो भाद्रपद महीने को जो है वो बोल रही हैं ये, क्योंकि वो भी एक पर्सनैलिटी है कि तू धन्य है, तू धन्य है क्योंकि तू क्योंकि तुम समय में जो मंगल निहित है वे मंगल तो आज तुम्हारे स्थान में मैंने अनुभव कर लिया, क्योंकि भाद्रपद में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी होती है। किंतु उस विधाता को धिक्कार है जिसने तुमको प्रत्येक मास में नहीं जोड़ा। तो राधा रानी की इच्छा क्या है कि श्री कृष्ण जन्मतिथि का महोत्सव जो है वो हर महीने में मिलना चाहिए, और श्री प्रभुपाद की कृपा से हमको हर रोज मिलता है। रोज सुबह भक्त आते हैं, दर्शन लेते हैं, भागवत कथा करते हैं, गुरु पूजा गाते हैं। तो जो ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भक्ति संदर्भ में एक जगह और जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वहाँ तो लिखते हैं कि एक एक पुरातन काल में एक वेश्या थी जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनको कोई भी जो है व्यक्ति जो है संघ के लिए नहीं मिला। तो ऐसा क्योंकि सब लोग इस प्रकार के लोग भी जन्म इस त्यौहार के दिन बोलते हैं चलो आज के दिन ऐसे कार्य में नहीं लग्न होते। तो वो वेश्या जो है उसको अनजाने में उसका जन्माष्टमी का व्रत हो गया और उसको जो है इस भौतिक जगत से छुटकारा मिला और भगवान के धाम में जगह मिली। तो अनजाने में किया गया, तो अगर हमें पता हो, हमें उसकी महत्वता पता हो, उसके बाद हम ये जन्माष्टमी जैसा महोत्सव मनाएं तो कितना उसका जो है लाभ होगा। और फिर इसी हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में जो भक्ति, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। तो भक्ति रत्नाकर में से जो है नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार, उन्होंने वर्णन किया, उन्होंने भी वर्णन किया कि एक दिन यशोदा मैया की कृष्ण के जन्मदिन पे उत्साही, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो फिर नंद बाबा ने बोला चलो मनाते हैं। तो फिर उन्होंने किसको बुलाया, राधा रानी के परिवार को, वृषभानु महाराज को तुरंत आमंत्रण भेजा और वो सब लोग एकत्रित थे। और इसी प्रकार से जैसे पहले कवि कर्णपूर्ण ने विवरण किया है उसी प्रकार से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया गया। और कवि कर्ण और यहाँ पर लिखा, उन्होंने ये भी लिखा नरहरि सरकार ने कि एक्चुअली जो है उसके पीछे जो बाह्य वजह तो जन्म दिवस है, लेकिन जो है अंदरी जो रीजन है जो है वो है कि आंतरिक जो विषय है वो है कि राधा और कृष्ण साथ में आने के लिए जो है विषय जो है कुछ अवसर ढूंढते थे। तो इसके पहले राधा रानी का जन्मदिवस मनाया गया, फिर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया गया। तो इस प्रकार उन जो है उन यहाँ पर भी ये वर्णित है। और श्री जो है तो अभी यहाँ पर हम लोग मना रहे हैं इस प्रकार, और दूसरे जो है मंदिरों में भी मनाया जा रहा होगा। तो और एक इसी पुस्तक में वर्णन है कि वीरचंद्र प्रभु जो जानवा माता के जो पुत्र हैं, जब वो व्रज परिक्रमा के लिए निकले तो उन्होंने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव देखा और राधा अष्टमी का महोत्सव भी देखा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये तो आप लोगों ने शुरू किया है, तो नहीं, हमारे पास इसका प्रमाण है कि कैसे ये पुरातन काल से चला आ रहा है। उन्होंने किसका देखा जन्माष्टमी महोत्सव, श्री श्री राधा गोविंद जी का। तो जब वो वृंदावन में आए, श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में गए, तो वहाँ पर उस दिन जन्माष्टमी का महोत्सव था। और उन्होंने जो है यही जो सब कवि कर्णपूर्ण ने बताया है उन्हीं विधियों के अनुसार उनका जन्मोत्सव जो है मनाया जा रहा था। और उसके पश्चात उन्होंने भी राधा अष्टमी का जो है महोत्सव जो है वो वहीं पे उसी मंदिर में फिर से देखा। तो इस समय कई मंदिरों में कथा चल रही होगी, कोई भक्त YouTube Facebook पे देख रहे होंगे, ये नहीं देख रहे होंगे तो कोई अन्य पुरानी कथा सुन रहे होंगे, इस्कॉन डिजायर ट्री से डाउनलोड करके सुन रहे होंगे। और अभी नहीं तो इस समय इस युग में भी हर क्षण कहीं ना कहीं जो है भगवान की जो है कथा चलती रहती है। तो कैसे जो शास्त्र में बताया गया है कि ये जो नित्य है भगवान की कथा, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में जो है सनातन शिक्षा उसमें बोलते हैं, नित्य नीला कृष्ण रा सर्व शास्त्र कहे, भूजिते न पारे लीला के मन नित्य है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, वो उनको बताने का प्रयास करें कि जो नित्य जो शब्द है ना, इसको सब लोग नहीं समझते कैसे हर क्षण चल रहे हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से नित्य अर्थात कभी ना समाप्त होने वाली। तो भगवान का प्राकट्य और अप्राकट्य वह निरंतर और सनातन चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है परंतु, हाँ बहुत बड़ा परंतु, क्योंकि दूसरी लाइन में बोल रहे हैं भूजिते न पारे लीला के मन नित्य, भूजिते न पारे लीला के मन नित्य है, कि परंतु सामान्य व्यक्ति की समझ से यह परे है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वरम। जो जो बेवकूफ़ जो व्यक्ति रहते हैं, बुद्धिहीन व्यक्ति रहते हैं, वो भगवान के जो ये मनुष्य रूपी जो उनका जो अवतार है, जो उनका रूप है, उसको बोलते हैं ये तो मनुष्य है, मानव शरीर है, ये थोड़े भगवान है, इस तरह से दो हाथ दो पैरों वाले हमारे जैसे ही दिखते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान भी 5000 वर्ष पूर्व हमारी तरह ही जो है आए पृथ्वी पर, और फिर एक सामान्य आदमी की तरह वो भी शरीर छोड़कर चले गए। आप देखेंगे अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो लोग जो है बोलेंगे कि लिखा है भगवान कृष्ण कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। हाँ, उनके समझ से जो है ऐसे ही। वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बोलते हैं, जब मैं ऑफिस जाया करता था उस समय में एक बंगाली कोलीग थे, तो उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र थे जो चैतन्य महाप्रभु की हत्या कैसे हुई उसके ऊपर पीएचडी कर रहे थे। कि उनको जगन्नाथपुरी के पांडवों ने उनका वध कर दिया। मतलब अच्छा, ये तो कुछ नया ही है जो है। तो बोले इसके लिए उनके मित्र की भी वो पांडवों ने हत्या कर दी। अच्छा, तो इस प्रकार की, मतलब मुझे आभास भी नहीं था, इस प्रकार की त्रुटियां जो है समाज में फैली हुई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी सोचते हैं, जबकि हमारे लिए भगवद गीता में बोला गया है कि वाशांसी जीर्णानी यथा विहाया नवानी गृहयाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णानी अन्यानी सम्याति नवानी देह। कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार हम भी आत्मा है, ये शरीर नहीं, हम भी नया शरीर धारण करते हैं। लेकिन लोग खुद को अमर समझते हैं कि हम अमर पट्टा लिखा के हैं और हमेशा के लिए जीने आए, और उनको आसान भाषा में भी समझाए। यहाँ तक कि एक उर्दू में भी एक शायर ने इस श्लोक को अनुवाद कर दिया। उन्होंने लिखा है भूत पांचों का बना, मतलब भूत वो डराने वाला भूत नहीं, पंच महाभूत है, भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बदता बिगड़ता है यही कुछ नहीं बिगड़ता आपका। कि ये पंच महाभूत से बना आपका शरीर है, वो ही बिगड़ता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। वो आगे उस शायर ने लिखा है जाता नहीं है कोई दूर दुनिया से चल के, मिलते यही है सब लोग बस कपड़े बदल बदल के। हाँ, कि ये जो आत्मा रूपी जो शरीर है वही कपड़े बदल कर, जैसे एक पतंग एक कटने के बाद एक हाथ से दूसरे हाथ में चली जाती है, उसी प्रकार। लेकिन ये मनुष्य जो है अपने आप को अमर समझता है, लेकिन भगवान को नश्वर समझता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारा नश्वर शरीर बुलबुले जैसा है। हाँ, बुलबुले सी जो है जिंदगी बोलते हैं ना लोग, कि एक क्षण में जो है खत्म हो जाती है, बुलबुला जैसे आता है। तो पानी में बुलबुले जैसा है और हमारे कर्मों के अनुसार मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्षों तक टिकेगा। हाँ, हम सब एक्सपायरी डेट लिखवा के आए, सबकी अलग अलग है शरीर की। लेकिन ये व्यक्ति जो है उसको नहीं समझता, वो भी सोचता है कि भगवान जो है हमारी तरह नश्वर हैं। तो उनको ये समझ नहीं आता कि भगवान की ये लीला जो है नित्य रूप से चल रही है। तो इधर चैतन्य महाप्रभु आगे बोलते हैं दृष्टांत दिया कही तबे लोक यदि जाने कृष्ण लीला नित्य ज्योतिष चक्र प्रमाणे। कि ये जो लीलाएं जो हैं सब जगह वर्णित हैं, ये इनको निरंतर चलती रहती हैं। तो मैं आपको ज्योतिष चक्र में, आपको ज्योतिष के द्वारा एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कैसे ये नित्य हैं। तो वो बताते हैं कि जैसे सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, उस प्रकार कृष्ण लीला भी निरंतर चलती रहती है, यहाँ पर ही नहीं अनेक स्थानों पर चल रही है। तो प्रभुपाद जी जब इस विषय पे बोलते हैं तो वो लोगों को सूर्य का उदाहरण देते हैं और पूछते हैं तो सूर्य कहाँ पर दिखता है सबसे पहले, तो ग्रीनविच में दिखता है, इसके बोलते हैं GMT ग्रीनविच मेन टाइम। हाँ, फिर बोलते हैं ज्योतिषक्र सूर्य न फिरे रात्रि दिने सप्त द्वीपांबुदी लंगी फिरे क्रमे क्रमे। सूर्य रात्रि और दिन के बीच सभी द्वीपों को पार करता है, सात है ना पृथ्वी पर, सात द्वीप उनको पार करता है। और जो है अपना जो है दिन रात घूमता रहता है और उनको पार करता है। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं रात्रि दिन है षष्ठी दंड परिमाण तीन सहस्र है शत पल तारमान। तो बताते हैं कि सूर्य की जो एक जो जो उसका जो एक एक धुरी पे एक बार घूमता है उसको 60 दंड में बांटा गया, और 7 दंड यानी कि 3600 पल, पल जैसे ना पल पल जो हम लोग सुनते हैं पल, और एक दंड में 60 पल होते हैं और एक प्रहर में 8 दंड होते हैं। तो भगवान बताते हैं इस प्रकार, और कैसे एक दिन और रात मिला के पूरे दिवस में 8 प्रहर होते हैं, तो एक रात्रि में 4 प्रहर, दिवस में 4 प्रहर। तो भगवान फिर बताते हैं कि अलाट चक्र प्राय से लीला चक्र फिरे सब लीला सब ब्रह्मांडे क्रम उदय करे। कैसे जो भगवान की जो लीला है, हाँ, उसके पहले भगवान बोलते हैं कि आई छे कृष्ण लीला मंडल 14 मन्वंतरे ब्रह्मांड व्यापक क्रमे 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 फिरे। कि भगवान की जो ये लीलाएं हैं वो जो 14 जो मनु होते हैं उस समय वो पूरे मनु के जो है कार्यकलापों में जो है वो फैली रहती हैं, और जब वो कार्य पूरा हो जाता है वापस उसी स्थान पर आ जाती हैं। तो जैसे कृष्ण जन्म यहाँ हुआ तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में होगा, फिर उसके बाद फिर तीसरे में होगा, उस प्रकार उनकी हर लीला जो है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घटती रहेगी। फिर भगवान अंत में कहते हैं जन्म बाले पौगंड कैशोर प्रकाश पूतना वदादि करी मौसलंत विलास कौन ब्रह्मांड कौन लीला रहे अवस्थान तटे लीला नित्य कहे आगम पुराण। तो इसके लिए बोलते हैं इस प्रकार भगवान का जन्म, उनका बाल्य पौगंड किशोर प्रकाश पूतना वदादि मौसल लीला सब एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में घटता रहता है हर क्षण, अभी भी किसी ब्रह्मांड में हो रहा होगा। इसके लिए सब वेद पुराण में आगम पुराण में उसको नित्य कहे, नित्य कहा गया है। तो ये किस लिए चर्चा की कि जो है मैंने कि भगवान हम किसी मृत व्यक्ति के उपासक नहीं, श्री कृष्ण भगवान जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है हमारे जैसा शरीर नहीं है। और यहाँ पर जो है इस श्लोक के तात्पर्य में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तात्पर्य को लिखते हैं कि कैसे एक सिद्ध भक्त जो होता है, भक्त जो भगवान में पूर्ण तरह से उसकी भक्ति सिद्ध हो जाती है, उसको इस समय जैसे अगर आप हो गए आप मृत्यु समय भगवान का स्मरण कर सके, जहाँ कहीं भी कृष्ण की लीला हो रही है वहाँ आप किसी गोपी के जो है घर में जन्म लेंगे और भगवान की लीलाओं में हिस्सा लेंगे, या फिर आप भगवान के जो है गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ भगवान की लीलाएं चल रही होंगी उनमें मतलब भगवान की लीलाओं का ही जो है हमेशा उसमें भाग लेते रहेंगे, ऐसा उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि से रेफरेंस देके लिखा है। तो हम लोग किसी मृत व्यक्ति के उपासक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण जो जिनकी लीलाएं नित्य हैं, जिनका शरीर जो है नित्य है, जो हमेशा जो है एक युवा व्यक्ति के रूप में रहते हैं। ये इस अगर कोई व्यक्ति वह कृष्ण की मृत्यु हो गई तो कोई ऐसा बेवकूफ व्यक्ति जो कह रहे सूर्य मर गया, सूर्य मरता है क्या, सबको पता है यहाँ डूबा तो कहीं और उदय होगा, यहाँ अस्त हुआ तो कहीं और। राधा गोविंद महाराज एक बार अपने कथा में बोले थे कि एक बार उल्लुओं की सभा हुई और उल्लुओं ने अपनी सभा में एक संशोधन जारी किया, हम लोग संशोधन जारी करते हैं कि सूर्य नहीं है, सूर्य नाम की कुछ जो है कोई पर्सनैलिटी मतलब कुछ है ही नहीं सूर्य क्यों, लेकिन उनके कहने से क्या होता है, सूर्य है जो लोग देख सकते हैं उन्हें दिखता है, क्योंकि उल्लुओं को दिखता नहीं है वो नहीं देख सकते। तो इस प्रकार जो लोग भगवान की लीलाओं को और उनको नहीं समझ पाते वे भी उसी के समान है। लेकिन हम सब लोग तो जो है बुद्धि का प्रयोग करते हैं भक्ति का नहीं। हाँ कल जब यहाँ लाइट नहीं थी 2 दिन से, तो मैं महाभागवत प्रभु को बोला अरे प्रभु जी लाइट नहीं है, मैं तो सब कंप्यूटर में पढ़ता हूँ कैसे मैं बोलूँगा कल, तो प्रभु जी बोले दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, सब हृदय में प्रकट हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला हमारा तो दिव्य ज्ञान हृदय नहीं, खोपड़ी प्रकाशित हो है, खोपड़ी से सोचते हैं, जो खो गई इसलिए पड़ी है। तो खोपड़ी में से लगा के आजकल के लोग जो खोपड़ी से सोचते हैं, जैसे एक कथाकार ने पूछा अपने की कथा में कि एक मक्खी एक मिठाई की दुकान पर गई और उसने 5 किलो मिठाई उठा ली, तो जो लोग बैठे थे बोले वाह वाह ऐसा ऐसी कैसी, बोले अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, अगर कोई ऐसी बात बोले तो उसको विश्वास मत करो, क्या एक मक्खी 5 किलो मिठाई उठा सकती है। हाँ, तो हम लोग खोपड़ी का प्रयोग सब जगह लगाते हैं, इसके लिए हम समझ नहीं पाते। तो हमें यहाँ पे भी जो है अगर भक्ति करेंगे तो ऐसा, जैसे प्रभु जी ने मुझे सही बोला कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, भक्ति का जो संबंध है वो हृदय से। हाँ, इसके लिए कहते हैं भक्त्या संजायते भक्त्या, एक भक्त के हृदय से ही दूसरे भक्त को, कोई भक्त ने देखा, प्रभुपाद जी ने किसी को देखा अरे भक्त बनना चाहिए, उसको भक्ति मिल गई, ना कि किसी को पुण्य कर्मों से, किसी ने बहुत दान पुण्य किया उससे भक्ति मिलती है। तो भक्ति का हृदय से जो है संबंध है। तो इसके लिए हम ये साथ में आकर जो है भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि हमारी तरह नश्वर शरीर वाले नहीं हैं, जो है शाश्वत हैं, उनकी लीलाएं जो हैं नित्य हैं। और इसके लिए ही श्रीमद् भागवतम में जो है कई जगह वर्णित है कि कैसे, एक जगह कहा गया कि अवम एवं लीला नर वपुर निर्लोकम अनुशीलयन रे मे गो गोप गोपी नाम रमयन रूप वक वक वाकृतय। तो वहाँ पे ये ब्राह्मण पत्नियों के जो है प्रसंग में आता है कि कैसे भगवान मनुष्यों की भांति आते, कि उनके जो प्रसंग लीला हैं उन्हीं की तरह स्वभाव रखते, गाय चराते हैं। कोई बोलेगा ना भगवान गाय, हमारी दृष्टि में भगवान मतलब कंट्रोलर, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा राजा जैसा, हमेशा गाय चराते हैं, गोप गोपियों के साथ खेलते हैं, हंसी टिटोली करते हैं, अपने शब्दों द्वारा, अपने रूप द्वारा, लीलाओं द्वारा जो है आनंद लेते हैं। लेकिन कवि कर्णपुर बोलते हैं ये ही वो तीन प्रयोजन बताते हैं कृष्ण जन्म के। तो उसमें पहला है भगवान का जन्म लेने का जो है, अवतरित होने का एक पहला प्रयोजन है कि अपनी माधुर्य लीला द्वारा जो आत्माराम मुनि जो भगवान के निराकार रूप के ऊपर मनन करते रहते हैं उनको प्रेम भक्ति में लगाना, और फिर अपने भक्तों को वात्सल्य साख्य दास्य श्रृंगार आदि लीलाओं के रसों से युक्त करना और खुद भी उसमें आनंद लेना, और तीसरा जैसा भगवत गीता में विनाशाय च दुष्कृतम, पृथ्वी को जो है विनाशों के भार से मुक्त करने के लिए। तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने चक्र के रूप से किया था, चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र के द्वारा लोगों का उद्धार करके उनको जो है इस जगत से विनाशों से मुक्त कर दिया, क्योंकि सब दुष्ट लोग जो है बहुत अच्छे भक्त बन गए। और ये कथा करने का बहुत फायदा है, 10वें स्कंद के शुरुआत में जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते जब पूछते हैं इस विषय में कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम तृण पुनाति, तीन जो है फायदे हैं, वक्ता राम पृच्छिकम श्रोत्रम तत्पाद शलिलम यथा, जैसे गंगा जो है तीनों लोकों को भू भूर भुवा तीनों को जो है शुद्ध करती है, उसी प्रकार भगवान की जो कथा जो है बोलने वाले को, जो प्रश्न करने वाला है और जो श्रोता जो सब सुन रहे हैं उन सभी को शुद्ध करती है, उन सभी का उद्धार करती है। तो ऐसे भगवान के एक भक्त थे, तो उनका नाम था राम टहल पांडे, बिहार के जो है हजारीबाग जिले में रहते थे। तो भगवान के वो भक्त थे और एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। जन्म के समय ही उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। एक भाई था उसका और भाभी थी, लेकिन जन्म के कुछ दिन पश्चात उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और एक बीमारी के चलते उनके नेत्र भी चले गए। तो भगवान जो है, लेकिन क्योंकि उनको माता पिता से जो बहुत कृपा मिली थी भगवत भक्ति में, बहुत ही इच्छा थी, अपने गांव में जब भी कुछ कथा होती थी, राम कथा भागवत कथा, बहुत उनको शौक था, वो सुनने के लिए जाते थे। कुछ खाने पीने में भी आसक्ति नहीं थी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कैसे कृष्ण कथा सुनने का क्या लाभ है और किस तरह उनके भक्त जो हैं व्यवहार करते हैं। तो उनके गांव में एक भागवत कथा हुई, तो उन्होंने जो है जब सातों दिन रोज सुनते थे, सुबह कुछ भोजन लेके जाते थे, कुछ साथ में लेके जाते थे, वहीं खा लेते थे, कथा सुन के लोगों से रास्ता पूछ कर जाते थे, वापस आ जाते थे। तो जब सातवां दिन हुआ तो कथाकार जो व्यास पीठ पे गए और उनको कैसे तो दीवार का सहारा लेकर लोगों को पूछ कर और उनको जो वक्ता थे उनको बोला, आपकी कुछ सेवा मुझे दीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं देख तो नहीं सकता लेकिन आपको कुछ मालिश कर सकता हूँ, कुछ आपके कपड़े धो सकता हूँ, कुछ तो मुझे सेवा दीजिए। उन्होंने बोला, कुछ नहीं, आप बस जो भी हो कथा हो वहाँ पर जाइए, यही सबसे बड़ी सेवा। तो ऐसे ही वो उनके दूसरे गांव में 2 मील दूर सेवा कथा थी, उसमें भी उन्होंने सोचा मैं जाता हूँ। तो ऐसे ही रोज जाते थे। एक दिन जो है बहुत आंधी तूफान, जैसे अभी यहाँ पे आया था 2 दिन पहले, खूब जो है खूब गर्जना, खूब बारिश इत्यादि। तो उनकी भाभी ने सोचा कि अब तो आज नहीं जाएंगे जो है देवर जी कथा में, इतनी बारिश इत्यादि हुए। तो जब ये आए स्नान इत्यादि करके, तो उन्होंने बोला, भाभी भोजन दीजिए, मेरे को कथा में जाना है। तो उन्होंने बोला, अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप, बहुत इतना आंधी तूफान है, मत जाइए, आप सकुशल आप पहुँचेंगे, वापस आ पाएंगे, मुझे विश्वास नहीं, तो मत जाइए। उन्होंने बोला, नहीं ये आप कैसी बात बोल रही हैं। तो उन्होंने बोला कि जो है, उन्होंने नारद भक्ति सूत्र में एक श्लोक है, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघ छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम कृष्ण संप्लापा मेघ छन्नम न दुर्दिनम। कि वो दिन बुरा दिन नहीं है जिस दिन जो है बारिश ना हो, हा? जिस दिन मेघ वर्षा ना दे, हा? वो दिन बुरा दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का संलाप, मतलब उनके विषय में कथा ना हो। और रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में गहरावे, अदिन न इंद्र अपल बरसाकर वज्र गरजावे। वो दिन बुरा दिन नहीं है जिस दिन मेघ में जो है बहुत गर्जना हो रही हो, मेघ बहुत ज्यादा बारिश करे और इंद्र जो है पृथ्वी पर वज्र ही गिरा दे, जो बिजली को इंद्र का वज्र गिरने के समान मानते हैं। सो दिन दुर्दिन नहीं उदर को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में व्यर्थ जावे। वो दिन भी बुरा दिन नहीं है जिस दिन आपको कुछ खाने के लिए मिले, आपको भूखे रहना पड़े। और वो दिन भी बुरा दिन नहीं है जब हमारे जीवन में प्रेमी संबंधी कुछ कामना है। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेती विपत्ति बखानी है, पर श्रवण ना परे हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानी है। ऐसा कौन सा दुर्दिन बताऊं, कौन सी ऐसी विपत्ति आ जाए, वो भी दुर्दिन नहीं है। वो ही एक दुर्दिन है जिस दिन हरि कथा का आस्वादन ना हो, जिस दिन हमें हरि कथा। तो ये शब्द उन्होंने अपनी भाभी से कहे और फिर वो घर से निकल गए। क्योंकि इतनी बारिश थी, इतना तूफान था, जंगल से जा रहे थे तो जंगल में कुआं था, जंगल में था तो उसकी दीवार नहीं थी, कुएं में गिर गए और कुएं में पानी नहीं था, सूखा था, बहुत गहरा बारिश गिर रही है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं कभी आपने जो भी दिया उसको स्वीकारा, माता पिता नहीं, भाई नहीं, अंधा हूँ, गरीब हूँ, लेकिन आपकी कथा सुनने का अवसर मुझसे मत छीनिए। तो तभी ऊपर से आई, अरे राम टहल पांडे जी कहाँ फंस गए, कुएं में गिर गए, बाहर आइए। तो उन्हें बोला, अरे कौन है, लगता है स्वयं भगवान आ गए। तो भगवान स्वयं, क्योंकि भागवत कथा में उनको जाने की इतनी तीव्र इच्छा थी, भगवान स्वयं वहां पे आए। तो उन्होंने बोला भगवान ने, तो उन्होंने राम टहल जी ने बोला, अरे मुझे कुएं से बाहर निकाले। उन्होंने, अरे कुआं नहीं है, गड्ढा है छोटा सा, मेरा हाथ पकड़ लीजिए और बाहर आइए। तो उन्होंने बोला, लेकिन मैं तो अंधा हूं, मैं कैसे आपका हाथ देखूं, आप ही मेरा हाथ देखकर पकड़ लीजिए। तो फिर भगवान ने अपना हाथ लंबा कर पकड़ कर उनको बाहर निकाला। तो राम टहल जी ने जैसे उनको छुआ समझ गए भगवान आए। तो उन्होंने बोला, अरे आप, उन्होंने बोला, नहीं नहीं हम भगवान भगवान नहीं है, हम तो वो कथा के लोगों को आमंत्रित करने जा रहे। बोले कथा तो अभी समाप्त हो गई। बोले नहीं नहीं वो जो वक्ता हैं वो बीमार हैं, भगवान ने इतना सारा अरेंजमेंट किया, वो बीमार हैं, आप जाइए कथा में। तो वो राम टहल जी जो है कथा के लिए निकले, और उधर उनके पहुंचने के पहले वहां उनकी भाभी पहुंची और बोली कि किसी को ये हमारे देवर आएंगे, उनको ये भोजन दे दीजिए, और फिर जाते वक्ता को भी कुछ प्रसाद दे गए, मिश्री, माखन मिश्री। तो वक्ता ने खाया और राम टहल जी आए, उन्होंने प्रसाद लिया, तो उनके सब चोटें ठीक हो गई और जो वक्ता थे उनके मुख से इतनी मधुर कथा निकली। तो जब उन्होंने राम टहल जी सुना ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि देखिए कैसे आपका इतना विश्वास है कि आप भगवान की कथा सुनने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान आपको जो है स्वयं जो है आपकी सहायता करने के लिए जो आए। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे भागवतम में कहा गया कि यद अनुचरिता लीला कर्ण पीयूष विप्रत, कैसे कृष्ण कथा जो है कानों के लिए अमृत, ये भक्त के जो है लीला में प्रसंग में हम देख सकते हैं। सकृत अदान विदुता द्वंद धर्म विनशता सपादि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहावा इह विहंग भिक्षु चारण चरंति, कि कैसे कृष्ण कथा कानों के लिए अमृत है, जो एक बूंद में भी आनंद लेता है उनका भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है, घर बार छोड़कर वृंदावन में रहते। हाँ, तो ये भक्त भी इसी प्रकार के थे। तो मतलब घर बार छोड़ने, यहाँ एक ये भी अर्थ है कि आसक्ति खत्म हो जाती है और लोग वृंदावन में उनकी भगवान की लीलाओं में उनकी जो है आसक्ति जो हो जाती है। और नारद मुनि ने जब भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में भेंट होती है तो भगवान उनको बोलते हैं कि आपका ये जो मनुष्य रूप जो में आए हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो संसार चक्र में फंसे हैं और उनको मालूम नहीं है कि कैसे संसार चक्र से छुटकारा पाया जाए। तो आप ही उन लोगों को अपनी लीलाओं के थ्रू, वो बोलते हैं स्वयशा प्रदीपकम प्रज्वालयत, कैसे आप अपनी लीलाओं के द्वारा उनको एक विशाल मशाल दिखाते हैं कि ये ही रास्ता है सत्य सच्चे धर्म का, यही इसी पथ पर हमें आगे जाना है। तो उन्हीं भगवान को हमारा प्रणाम है। तो इस प्रकार जो है भगवान की, तो हमें जन्माष्टमी का जैसे महोत्सव है, उसी प्रकार से लीलाओं इत्यादि में भगवान के चरित्र में, उनके गुण में, उनके सब में जो है डूबने का जो है अवसर प्रदान करता है। जबकि तो और हमें राधानाथ महाराज की कृपा से जो है व्रज में वास मिला है, जहाँ पर हम उनको बहुत अनेक अनेक प्रकार से स्मरण कर सकते हैं, चलते फिरते रास्ते देखते। भागवतम में कहा गया कि गोपियाँ दूध निकालते हुए, धान कूटते हुए, मक्खन निकालते हुए, गोबर लीपते हुए, हाँ, बच्चों को झूला झुलाते हुए, हर समय जो है वो भगवान की जो है लीलाओं का स्मरण करती रहती थी। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर ने बहुत अच्छा जो गोविंद दामोदर सोते उसमें लिखते हैं वो कि विक्रे तु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति दद्यादिकमो वशद वोचद गोविंद दामोदर माधवेती, कि वो गोपियां जो है वो दूध बेचने आई थी, तो मक्खन लेने की बजाय बोलती अरे कृष्ण ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, उनके मुख से यही निकलता था। वो भूल जाती थी क्योंकि मुरारी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उनका मन जो है वहां पर जो है लगा हुआ था। इस प्रकार एक कथा में एक वक्ता से एक जो है ग्वालिन, ये एक थोड़ी जो है इतनी पुरातन कथा नहीं, लेकिन ब्रजवासी ग्वालिन की, उसने सुना वक्ता ने कहा कि भगवान का नाम तो ऐसा ऐसा भागवतम में है ना बहुत जगह, हाँ, कि ये तो भव सागर से पार करा देगा। तो गोपिन ने सोचा अरे भव सागर से पार करा देगा, तो वो रोज जमुना के पार से दूध दही बेचने के लिए 2 पैसे देख के आती थी और 2 पैसे लेके जाती थी। उसने सोचा भव सागर पार करा देगा तो यमुना भी पार करा देगा। तो उस दिन वो नाव में नहीं गई, जमुना के तट पे गई और बोली जोर से राधे श्याम राधे श्याम, तो जमुना ने उसको रास्ता दे दिया। फिर ऐसे राधे श्याम बोलते बोलते गई, जमुना पार कर गई, रोज इस तरह आने जाने लगी। 2 महीने हो गए तो उसके बहुत पैसे बच गए। तो उसने सोचा ये गुरु जी जिन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है उनको घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करते, तो उनको आमंत्रित किया, उनको जमुना किनारे लाई, तो गुरुजी ने बोला अरे चलो नाव तो इधर है, बोली नहीं नहीं हम उधर से जाएंगे दूसरे रास्ते से। तो गुरुजी ने सोचा शायद इसने मेरे लिए कोई स्पेशल नाव का जो है अरेंजमेंट किया है, कुछ दूसरा इंतज़ाम किया है। तो उसने तो बोला जय राधे श्याम और रखा जमुना जी ने, और गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा वो आधे नदी के अंदर, और गुरुजी बोला अरे मैं तो भीग रहा हूँ तेरे को कैसे रास्ता मिल रहा है, लेकिन अगर वो बोलना छोड़ देगी तो वो भी भीग जाएगी। तो वो गुरुजी का हाथ पकड़कर उनको खींचते खींचते नदी के उस पार ले गई और गुरुजी को भोजन कराया। और गुरुजी ने पूछा अरे भाई तूने कौन सा जादू किया, बोले जादू नहीं किया, आपने ही तो बोला कथा में कि ये हरि नाम भवसागर पार करा देगा, तो मैंने जो है आपकी बात मानकर मैं रोज राधे श्याम बोलती थी और यमुना जी मुझे रास्ता दे दी थी। तो गुरुजी बोले अरे मैं सिर्फ बोलता ही हूँ लेकिन मुझे तुम्हारे जितनी श्रद्धा और विश्वास नहीं है हाँ इसमें हरि नाम में। तो उसको प्रार्थना करते काश मुझे भी इतनी श्रद्धा मिल जाए। तो समाप्त करने के लिए एक और इस श्रद्धा पे विश्वास पर एक जो है एक दंत कथा सुनाकर समाप्त करूँगा कि एक नट था, जो नट रहते हैं ना रस्सी बांधकर एक तरफ से रस्सी के उस पार जाते हैं, तो एक दो बिल्डिंगों में के बीच में एक नट जो है वो रस्सी बांधकर इधर से उधर अपने बेटे को अपने कंधे पे बिठाकर चल रहा था और सब पब्लिक नीचे ध्यान से टकटकी लगाए देख रही थी क्या ये उस पार जा पाएगा। तो अभी भी दुनिया में ऐसे नट हैं और उसकी गणना है कि 90% जो गिरते हैं उनमें से 90% एकदम उस पार पहुँचने के पास ही गिरते हैं। तो लोग तो बड़ा ही रोमांचक रहता है, वो नट उधर जाता है और वो जाता है और पहुंच जाता है और पब्लिक बड़ी तालियां बजाती है, बड़ी उसकी जय जयकार करती है। तो फिर वो पब्लिक को संबोधन करके जो जनता को पूछता है तो आपको कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, कैसा आके आप लोगों को विश्वास है मैं दोबारा कर पाऊंगा, तो जो जनता बोलती है हाँ जरूर कर पाओगे, तो बोलता है फिर आप में से कौन अपना बेटा मुझे देने के तैयार है मैं अपने कंधे पर बिठा लूँ। हाँ तो सब एकदम शांति, कोई अपना बेटा देने को तैयार नहीं। तो बोलते हैं कि ये विश्वास और जो आपको मुझ में विश्वास है और इसमें दोनों विश्वास में फर्क है, आपको विश्वास है पर संपूर्ण विश्वास नहीं है। उस प्रकार जैसे हमें विश्वास है, हम थोड़ा हुआ भक्ति तो ले लिया लेकिन संपूर्ण विश्वास जैसे ये ब्रजवासी भगवान के प्रति दे पाए हैं उस नहीं दे पाए, इसके लिए हम वो स्थिति अनुभव नहीं कर पाते। बोलते हैं बताते हैं लेकिन खुद अनुभव नहीं कर पाए। मेरे एक पारसी मित्र 21 वर्ष का पारसी, वो यहाँ पर वो आए योगा में 7 दिन के लिए, मेरी भेंट हुई, हमारी मित्रता हुई, फिर श्रीनी माया प्रभु से मिलवाया, उनसे मित्रता हुई, फिर व्रजरस प्रभु से भी मिलवा दिया क्योंकि उन्होंने राधानाथ महाराज की पुस्तक पढ़ के उसकी इच्छा है कि मेरे को भी उधर थोड़ा हिमालय में घूमने जाना है। तो हमने बोला हिमालय मत जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ हमारे व्रजरस प्रभु हैं। तो कुछ 10 दिवस पहले उनके पिता का देहांत हो गया, उनके सामने ही वो बैठे थे महाभारत सीरियल देख के और उनको क्या हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया उनके सामने। लेकिन ये व्यक्ति को महाराज की शिक्षाओं में, प्रभुपाद की शिक्षाओं में इतना विश्वास है कि वो उसको बहुत, मुझे फ़ोन पे बता रहा था कि मधु महाधव प्रभु जो मुझे पता है कि मेरे पिताजी तो शाश्वत हैं, वो तो ये तो उनका शरीर नष्ट हुआ है और मैं तो पूरा समय बस हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा था। वो पारसी हो के, क्योंकि जब वो जुड़ा था तब वो मुझे बोलता था कि वो गौ मांस भी खाता है लेकिन हमारे बिना बोले उसने गौ मांस छोड़ दिया, भगवान के हरि नाम करने लगा, सब जप करने लगा। और अभी कुछ दिनों पहले उसको ऑनलाइन एक सेमिनार में बुलाया गया, उसको पूछा कि आपके प्रेरणा का स्त्रोत्र कौन है, उसने बोला राधानाथ स्वामी। और वो सेमिनार के बाद उनको बहुत लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने महाराज की पुस्तक दी, उनको कृष्ण भावना के बारे में बताया पारसी लोगों को। तो मैं सोचा था कि हम बताते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कई बार इतने श्रद्धा और इतने विश्वास, क्योंकि वो संपूर्ण विश्वास दे पाते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि हम सब भी संपूर्ण विश्वास दे पाए, हमारा मन बीच में ना अटके। एक ये एक अंतिम जो है कथा कि कैसे हमारा मन हमको परेशान करता है कभी हाँ कभी ना के बीच में। हाँ एक वृद्ध व्यक्ति जो है अपने घर के बाहर आंगन में बैठ के अपने पोते के साथ खेल रहे थे, उनकी बड़ी दाढ़ी थी, पोता उनकी दाढ़ी खींच रहा था, खींच के क्या बोल रहा था, बाबा बाबा बाबा। तो वहाँ से एक संत गुजर रहे थे, तो बूढ़े व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति ने पूछा महाराज जी कुछ तो बताइए, कुछ तो ज्ञान दीजिए। तो बोले मैं क्या दूँ, बोल रहा है ना पोता, बाबा बाबा मतलब बाबा बन जाओ, अभी टाइम आ गया, हाँ अभी सब छोड़ दो ये आसक्ति। इतने रिमाइंडर भेज चुके भगवान, सफ़ेद बाल हो गए हाँ पर काले कर लेते हो, हाँ कान बंद हो जाते पर मशीन लगा लेते हो, दिखना बंद हो जाता चश्मा लगा लेते हो, दांत टूट जाते नकली दांत लगा लेते हो, पर पोता बोल रहा है बाबा बाबा। ब्रज में जाएंगे तो हमको लोग बाबा ही बोलते हैं, ए बाबा किधर जा रहे हो, बाबा मतलब जो संसार से विरक्त हो चुका है। तो वो वृद्ध आदमी बोलता है महाराज जी बात तो आपने सही कही, लेकिन अभी तो ये मेरा पोता मेरे बेटे का बेटा बैठा है, जब मेरी बेटी का बेटा मेरी गोद में बैठता है ना तो वो मेरी दाढ़ी पकड़ के बोलता है नाना नाना नाना, मतलब अभी मत करो हाँ, तो मैं हमेशा द्वंद्व में फंसा रहता हूँ। तो इस तरह हमारा मन जो हमें हमेशा बाबा और नाना के बीच में अटकाए रखता है। तो हमको ये प्रयास करना है कि हम साथ में आएं और साथ में आकर हम ये संपूर्ण विश्वास जो है अपने हृदय में जागृत कर सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए। और ये कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पर्व मनाकर एकदम श्रद्धा के साथ और जैसा भगवान ने बोला है कि सब भक्तों के साथ में जो है आके, तो जो है तो इसके लिए उसके लिए उन्होंने सबसे अच्छा उपाय दिया है, कल युग युग धर्म ना मेरा प्रचार तथा लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं किसके लिए, कि हमको उसका सबसे आसान तरीका देने के लिए कि हम सब लोग मिलकर जो है भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन में भाग ले सकें और हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका जप कर कर अपनी भौतिक इच्छाओं से छुटकारा पाएं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत कर पाएं। तो यहाँ पर ही कथा को विराम देना चाहूँगा। श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय।